الرحمن الرحیم. اگر انسان تاریخ کا مطالعہ کرے تو طول تاریخ میں پاور ایشیا اور یورپ میں رد و بدل ہوتی رہی ہے، شفٹ ہوتی رہی ہے. اس وقت پاور شفٹ ہو رہی ہے ایشیا کی طرف. یورپ اور امریکہ اپوننٹ ہیں، مخالف ہیں، رقیب ہیں ایشیا کے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ہجمنی اور غلبہ پوری دنیا کے اوپر باقی رہے اور اس میں کنٹینیوٹی رہے. وہ ایشیا کو مختلف بحرانوں میں شکار کر کے اس شفٹ آف پاور کے پروسیس کو سلو کرنا چاہتے ہیں اور پھر روکنا چاہتے ہیں. ایشیا کے ہارڈ پوائنٹس کو وہ ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں، جس میں ویسٹرن ایشیا ہے، ساؤتھ ایشیا ہے، ساؤتھ چائنا سی ہے. یہ ایشیا کے ہارڈ پوائنٹس ہیں. ہارڈ پوائنٹ سے مراد وہ جگہ جہاں پر ساری دنیا کی عالمی قوتیں کنفلکٹ کے اندر انوالو ہو جاتی ہیں، جیسا کہ بھی ویسٹرن ایشیا میں ہو رہا ہے. وہاں امریکہ، یورپ، چین، رشیا اور علاقائی قوتیں ایران، سارے کے سارے وہاں پر موجود ہیں. ساؤتھ ایشیا میں بھی اگر یا گڑبڑ ہوتی ہے یا ہو رہی ہے تو یہاں پر بھی امریکہ ہے، انڈیا آ جائے گا، چائنا ہوگا، رشیا ہوگا، دنیا کی عالمی طاقتیں ہوں گی. اور ساؤتھ چائنا سی کی بھی یہی صورتحال ہے. امریکہ دنیا کے اوپر اپنی ہجمنی کو باقی رکھنے کے لیے آخری حد تک جانے کو تیار ہے. ویسٹرن ایشیا اور ساؤتھ ایشیا بہت اہم ایشیا کے لیے. ویسٹرن ایشیا انرجی کے ذخائر کا گڑھ ہے، اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ تھا کہ جس کے ہاتھ میں ویسٹرن ایشیا ہوگا انرجی کے ذخائر ہوں گے، دنیا پر رول کرے گا. جس کے ہاتھ میں سمندری راستوں پر کنٹرول اور ہولڈ ہوگا وہ دنیا پر رول کرے گا. لہٰذا یہ سارے کے سارے علاقے امریکہ اور یورپ نے مل کر اپنے کنٹرول میں لے لیے. دوسری فرسٹ ورلڈ وار جب شروع ہوئی تو یہ کہا گیا، جیسے ڈیوڈ فرمکن کی کتاب پیس ٹو اینڈ آل پیس میں لکھا ہے، کہ یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ان جنگوں کے نتیجے میں گریٹر مڈل ایسٹ پیدا ہوگا. لارنس آف عربیہ کے ذریعے فرسٹ ورلڈ وار کے دوران خلافت عثمانی کو ختم کیا گیا. اس نے عرب قبائل کو اپنے ساتھ لگایا اور یہ لالچ دیا کہ ایک عظیم عرب حکومت وجود میں آئے گی، تم سے ترکوں کا تسلط ختم ہو جائے گا، اور جس کے نتیجے میں اسرائیل وجود میں آ گیا. عثمانی خلافت ٹوٹی، مسلمانوں کی طاقت ٹوٹی، اور اس کے نتیجے میں اسرائیل وجود میں آ گیا. اسرائیل امریکہ کی اس خطے کے اندر سیکیورٹی کا عام ستون تھا. اسرائیل کا اگر حدود عربہ دیکھا جائے، شروع سے کہا گیا جی کہ اسرائیل جو ہے وہ نیل اور فرات تک ایکسپینڈ ہونا چاہتا ہے، اور یہ ایکسپینشن اسرائیل کی علاقے کے اندر بحران کھڑے کرتی ہے. اور اگر اسرائیل امریکہ کی سیکیورٹی کے پانچ ستون تھے اس ریجن کے اندر، ایران تھا، ترکی تھا، چار اسرائیل تھا اور سعودی عرب تھا. انقلاب سے ایک ستون گر گیا، طیب اردوغان کے دور میں انہوں نے فاصلہ لے لیا امریکہ سے، اور اب اسرائیل. اسرائیل کا اگر حدود عربہ دیکھا جائے تو اسرائیل کی ڈیپتھ نہیں ہے. میکسیمم چوڑائی اسرائیل کی 137 کلومیٹر ہے اور منیمم 24 کلومیٹر ہے تقریباً. بہت چھوٹا سا ملک ہے. ایکسپینشن اس کی اسٹریٹجک ضرورت ہے. اگر اسرائیل ایکسپینڈ نہیں ہوتا تو بڑا نہیں ہوتا تو سروائیو نہیں کر سکتا، اس کے اوپر تھریٹ ہمیشہ رہے گا. ایکسپینشن کے لیے اسرائیل نے جنگیں شروع کی. 1967 کی جنگ کے اندر اسرائیل نے 6 دنوں میں 13 ارب مالک کو امریکہ اور یورپ کی مدد سے شکست دی، اور اسرائیل 2-3 گنا بڑا ہو گیا، جس میں پھر اس نے شام کے علاقے بھی چھین لیے، کچھ اردن کے بھی چھین لیے، اور اس کے علاوہ مصر کے بھی چھین لیے. انقلاب اسلامی ایران کے بعد اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا 82 میں، اور اس کے علاقوں پر قبضہ کر لیا. اسرائیل ایکسپینشن چاہتا ہے، ایکسپینڈ ہونا چاہتا ہے. اس کی ڈیپتھ نہیں ہے، اس کی بیک نہیں ہے، سمندر ہے ایک طرف. لہذا ایکسپینشن جب کے لیے جنگ چاہتا ہے تو اس نے لبنان پر قبضہ کر لیا، لیکن لبنان کی ریزسٹنس نے مقابلہ کیا اور اسرائیل سے لبنان کو چھین لیا. پہلی بار ایسے ہوا کہ اسرائیل نے جنگ کے ذریعے علاقے خالی کیے اور وہاں سے وہ نکل گیا. جنگوں کے ذریعے इसराइल की एक्सपेंशन का जो सोच थी और ख्याल था वो अब शिकस्त खा चुका है। शाम में जो हालात पैदा किए गए, जो फ्रंट लाइन था इसराइल के खिलाफ, शाम को तोड़ना चाहते थे। अगर शाम टूट जाता, इराक टूट जाता, ईरान टूट जाता और ये पूरा रीजन टूटता था, पाकिस्तान टूटता। शाम और फिर इराक के अंदर भी दाइश आ गई, अमेरिका की और यूरोप की सपोर्ट थी और बाद मुसलमान ममालिक इनको पैसे दे रहे थे, लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे थे, लेकिन शाम के अंदर वो शिकस्त खा गए, शाम को नहीं तोड़ सके, इराक को नहीं तोड़ सके। नतीजतन जंगों के जरिए एक्सपेंशन का दौर गुजर गया। अब डील ऑफ सेंचुरी आ गई, क्योंकि इसराइल की जरूरत है एक्सपेंशन। पैसे के जरिए जमीनें खरीद लो, फिलिस्तीनियों को पैसा दो, 60 अरब डॉलर उर्दन को, मिस्र को, फिलिस्तीन को, लुबनान को दिए जाएं, फिलिस्तीनी वापस ना आए इसराइल के अंदर, यानी मकबूजा फिलिस्तीन के अंदर, वो बाहर ही रहें। यरूशलम इसराइल को दे दिया जाए, जुलान की पहाड़ियां इसराइल को दे दी जाए, वेस्टर्न बैंक इसराइल को दे दिया जाए और फिलिस्तीन का मसला पैसों के जरिए हल किया जाए और इसराइल को और जमीन मिल जाए। मैं कल परसों का एक ट्वीट देख रहा था नेतन्याहू का, वो ये कहता है कि एक्सपेंशन हमारी जरूरत है, हमने फैलना है, हमने बड़ा होना है, हमारी जरूरत है, हम बहुत छोटे हैं। उसको एटम बम दिए गए, उसको बहुत कुछ बनाने दिया गया, बहुत कुछ दिया गया, लेटेस्ट असला उसको दिया गया, लेकिन अब डील ऑफ सेंचुरी, डील ऑफ सेंचुरी को तमाम फिलिस्तीनियों ने रिजेक्ट कर दिया, तमाम फिलिस्तीनियों ने रिजेक्ट कर दिया, अरब अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, कुछ अरब ममालिक इसराइल के साथ मिलकर डील ऑफ सेंचुरी के लिए पैसे दे रहे हैं। और एक नया लॉरेंस ऑफ अरेबिया आ गया है, कुशनर, जो इवानका के अबू साहब का दामाद है डोनाल्ड ट्रंप का, वो समझता है कि पैसों के जरिए हम इनका दीन, इनका ईमान, इनकी जमीन सब कुछ खरीद लेंगे, ये अपनी वैल्यूज भी बेच देंगे पैसों के जरिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त फिलिस्तीनी इकट्ठे हो गए और उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, जो मनामा में डील ऑफ सेंचुरी के वाले से पहली इकोनॉमिकल कॉन्फ्रेंस हुई, माशी कॉन्फ्रेंस हुई। ईरान के ऊपर जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं और दबाव डाला जा रहा है, क्यों? ईरान ने ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को नाकाम बनाने में रोल प्ले किया है। इन्होंने शाम नहीं टूटने दिया, इराक नहीं टूटने दिया, फिलिस्तीनियों को सपोर्ट किया है, मदद की है, साथ दिया है और उनका साथ नहीं छोड़ा प्रेशर के बावजूद। सैंक्शन इसलिए, ग्रेटर इसराइल अगर बनता है तो पूरा रीजन रीसाइज और रीशेप होगा। आपको याद होगा 2006 की जंग में जब लुबनान पर अटैक हुआ तो कंडोलिज़ा राइस ने कहा था, जो उस वक्त की वज़ीर ख़ारिजा थी अमेरिका की, कि ये ग्रेटर मिडल ईस्ट पैदा हो रहा है, वो चाहते हैं कि दोबारा से रीसाइज करें इस रीजन को और रीशेप कर अपने तसल्लत को बाकी रखें। इस रीसाइजिंग के मंसूबे के खिलाफ और रीशेप करने के मंसूबे के खिलाफ और ग्रेटर इसराइल बनने के खिलाफ ईरान ने सपोर्ट किया है इस रीजन के ममालिक को ताकि ना टूटे, और हकीकत में उन्होंने पूरे एशिया को सपोर्ट किया है, क्योंकि पूरा एशिया डिस्टेबलाइज हो जाता। यही वजह है कि चाइना भी वहां पर और रशिया भी वहां पर आ गया, ईरान, चाइना, रशिया और बड़ी तक तुर्की भी अब इनके साथ इकट्ठे हो गए ताकि इस डर्टी गेम को यहीं पर रोका जाए। ये जो इस खित्ते के ऊपर जंग के साइबन ला रहे हैं और थ्रेट कर रहा है अमेरिका, डरा रहा है अमेरिका की, वो रोब और दबदबे के जरिए जो कार्रवाइयां करता था, दौर गुजर गया, कैरेबियन सी से उसका जहाज चलता था और घूमते गिर जाती थी, वो खत्म हो गया दौर। जैसा कि अभी इन्होंने लिखा है, मैंने पढ़ा नहीं इसको डिटेल से, लेकिन 8 रीजन जो है अमेरिका यूएस जो है वो हमला नहीं कर सकता ईरान के ऊपर, उसकी वजूहात है, नहीं कर सकता वो। इन्होंने अपना डिफेंस सिस्टम बहुत जबरदस्त बनाया हुआ है, बहरहाल उस पर मैं नहीं जाता, मेरा मौजू भी नहीं है। पाकिस्तान को गैर जनबदार नहीं रहना चाहिए, जंग के खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारा अपना डिफेंस है। इस वक्त ईरान दीवार बना हुआ है एशिया को बहरान में डालने के खिलाफ, ग्रेटर इसराइल के खिलाफ दीवार बना हुआ है। हमें सपोर्ट करना चाहिए, किसको? जंग के खिलाफ हमें जाना चाहिए, हम डील ऑफ सेंचुरी की मुखालफत करनी चाहिए, हमें इस खित्ते के अंदर जंग के खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए और बाकायदा कहना चाहिए कि हम इस जंग को तहमल नहीं करेंगे, हम इस जंग के खिलाफ हैं। हमारे रीजन में आके किसी मुल्क को आकर नहीं है, दुनिया किस कोने से आए और यहां पर आकर हमारे पर जंग मुसल्लत करे, हमें इसके लिए बाकायदा काम करने की जरूरत है। वजारत, जैसा कि नेमुल्लाह साहब कहते हैं, अफगानिस्तान के अंदर अमन चाहिए हमें, अफगानिस्तान के अंदर अमन चाहिए, अफगानिस्तान में अमन नहीं आएगा, यहां पर भी नाम नहीं रहेगी साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के अंदर, और खित्ते के ममालिक उसे के करीब आना चाहिए, और अमेरिका का पांव यहां से निकालना चाहिए हमें। बायलेटरल रिलेशन, एशिया के ममालिक को इकट्ठा होना चाहिए, ऑन बोर्ड होना चाहिए, एशिया एशियन कंट्रीज को आपस में डायलॉग करना चाहिए और एशिया की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। इस वक्त दाइश को अफगानिस्तान में लाया जा रहा है, हम देख रहे हैं, कोरम एजेंसी यहां अफरासियाब घटक साहब मौजूद हैं, उनको ज्यादा इस बारे में मालूम है कि किस तरह से वहां पर ला के रीजन को डिस्टर्बलाइज किया जा रहा है, हम देख रहे हैं वहां पर। लिहाजा पाकिस्तान को चाहिए कि वजारत खारजा पाकिस्तान की फाल होनी चाहिए, मुतहरक होना चाहिए। पाकिस्तान एक एडमी मुल्क और अहम मुल्क है, जंग के खिलाफ पाकिस्तान के वजीर खारजा को दौरे करने चाहिए, डील ऑफ सेंचुरी के खिलाफ हमें स्टैंड लेना चाहिए, चूंकि डील ऑफ सेंचुरी ग्रेटर इसराइल का मनसूबा हमारे भी नुकसान में है, पाकिस्तान के नुकसान में, मुस्लिम उम्मा के नुकसान में है, और एशिया के नुकसान में है, साउथ एशिया के नुकसान में है, हमारे नुकसान में है। अफगानिस्तान के अंदर ना अमनी हमारे खिलाफ है, पाकिस्तान को, चाइना को, रशिया को, अफगानिस्तान को अनबोर्ड लें अपने साथ, तुर्की को, ईरान को, इस खित्ते के ममालिक को आपस में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप कायम करनी चाहिए, ताकि हम यहां पर ना जंगे होने दें, ना बोरान खड़े होने दें, और हम अपने हाउस को ऑर्डर करें। इसके लिए मुतहर्रिक खारजा पॉलिसी की जरूरत है, गुम गु की कैफियत से निकलने की जरूरत है, हमारे वजीर खारजा को बाकायदा दौरे करने चाहिए, इस हवाले से रबते करने चाहिए, ताकि पाकिस्तान का एक रोल नजर आए। हम एक जिम्मेदार मुल्क हैं, हम एक अहम मुल्क हैं, हम मुस्लिमों के अंदर एक बहुत बड़ी हैसियत के हामिल हैं। इस जमूद से, इस रुकूद से, इस सर्दपन से हमें बाहर निकलना चाहिए, और इसके लिए हमें इकदाम करने चाहिए। अफगानिस्तान के अंदर जैसे मैंने पहले कहा, सेंट्रल एशिया के ममालिक के साथ हमें रिलेशन कायम करने चाहिए। हमारे अजीज ने कहा कि 5 अरब इंसानों की कनेक्टिविटी कहां पे, पाकिस्तान, पाकिस्तान बहुत तरक्की कर सकता है। ग्रेटर इसराइल का मनसूबा सीपेक के खिलाफ भी है, सीपेक को भी डैमेज करेगा, क्योंकि ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए बोहरान खड़े करना चाहते हैं, वो इस रीजन को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, जिसके नतीजे में सीपेक को भी डैमेज किया जाएगा और नुकसान पहुंचाया जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि सीपेक कामयाब हो, इसके लिए भी हमें ग्रेटर इसराइल सेंचुरी, जो डील ऑफ सेंचुरी और जंग के खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए कि हम एंटी वार हैं, और हमें अपने हमसाया मुल्क को, क्योंकि वहां पर अगर जंग आती है खुदा न खास्ता, हम असरअंदाज हुए बगैर नहीं रह सकेंगे। अफगानिस्तान के अंदर हालात खराब है, हम पर असर हो रहा है, लिहाजा हमें बाकायदा इस हवाले से रोल प्ले करना चाहिए, और मुस्लिम उम्मा के ममालिक के अंदर जंगों को, यमन की जंग खत्म करने के लिए मैं रोल प्ले करना चाहिए, ईरान और सऊदी अरब को करीब लाने के लिए मैं रोल प्ले करना चाहिए, पाकिस्तान को इसमें आगे आना चाहिए, ताकि हम अपने हाउस को इनआर्डर करें, अपने इख्तलाफात पर गालिब आए, और वो लोग जो दूर से आकर अपने मफादात को तरजीह देते हैं, हमें गुलाम बनाते हैं, हमें तोहीन करते हैं, हमें दूध देने वाली गौ कहते हैं, पता नहीं किस किस तरह से हमें मुखातब करते हैं और हमारी तजलील करते हैं, हम उनको इस खित्ते से निकालें, और एशिया फ्यूचर के अंदर जब ताकतवर होगा और पावर शिफ्ट होगी, पाकिस्तान एशिया का दिल है, पाकिस्तान बहुत ताकतवर होगा, और हमें इस हवाले से कोताही नहीं करनी चाहिए, सुस्ती नहीं करनी चाहिए। दाखिली इख्तलाफात के बावजूद, जो बावजूद पार्टीज में होते हैं, सियासी पार्टियों में हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के इंटरेस्ट पर सारी पार्टियां इकट्ठी होती हैं, और मेरे ख्याल में एक कौमी बयानिया आना चाहिए इस मौजू के ऊपर, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर भी बकायदा इस पर डिबेट होना चाहिए, ताकि हम मुश्तरका तौर पर अमेरिका को और एशिया के दुश्मनों को यह पैगाम पहुंचाएं कि हम सारे इकट्ठे हैं, और पाकिस्तान जैसे एक ताकतवर मुल्क कभी भी तहम्मुल और बर्दाश्त नहीं करेगा इस तरह की जंगों को और इस तरह की सूरत हाल को, और हम सैंक्शंस को भी मजम्मत करें। अगर ये अमेरिका इस तरह से एक सैंक्शन लगाता रहे, एक मुल्क पर, दूसरे मुल्क पर, तीसरे मुल्क पर, मेरे ख्याल में ये हमाकत जो कर रहा है, इसके खिलाफ भी स्टैंड लेना चाहिए। चाइना के साथ इकोनॉमिकल वार, ईरान के साथ, रशिया के साथ, अतः यूरोप के साथ, अतः लेकिन अमेरिका के ममालिक के साथ भी वो इस तरह की सूरत हाल पैदा कर रहा है, हमें इस हवाले से भी रोल प्ले करना चाहिए। इसका अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ डे पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा, और मेरी गुजारिश है कि हमारी पार्लियामेंट के अंदर एक नैरेटिव आना चाहिए सैंक्शंस के खिलाफ भी, इकोनॉमिकल, और जंग के खिलाफ भी, ताकि हम और एशिया के अंदर हमारे जो ममालिक हैं, पाकिस्तान के वजीर खारजा को सफर करना चाहिए, दौरा करना चाहिए, और बाकायदा अपने स्टैंड को खड़ा करना चाहिए, और बाकायदा मुस्लिम ममालिक के अंदर भी सऊदी अरब जाए, ईरान जाए, अमारात जाए, यमन जाए, सबके साथ मिले, और इस पाकिस्तान मुसलमान ममालिक के अंदर जंगों को भी खत्म करने में रोल प्ले करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।